जी गिलानी साहब,
और इसके पीछे जो है ट्रांसमिशन जो मैसेज जो है वो पिछले 20 साल से इन अकाउंट्स को बंद करने की कोशिशें करवा रही है। और इसी सिलसिले में हमारा जो है 4 तारीख को जब ये लीक आई है तो हमारे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान ने लिखा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कि ये सुप्रीमो केस लेके इसको इमीडिएटली इंक्वायर किया जाए। वजह यह है कि पाकिस्तान में दूसरे इदारे हैं अकाउंटेबिलिटी के, FIA हो गया, स्टेट बैंक हो गया, FBR हो गया, NAB हो गया, वो इस चीज को नहीं करेंगे क्योंकि इसके अंदर सिटिंग हाईकोर्ट के जज का नाम भी है जिसकी कमी है और रिटायर्ड जजेस के नाम भी है।
सही।
तो पाकिस्तान के कानून के हिसाब से जजेस की अकाउंटेबिलिटी सिर्फ जुडिशल सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कर सकता है। तो हमने लिखा था मगर उसको अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना है। और ये इसके बाद जो है जो पॉलिटिकल पार्टीज का चलना है और नवाज शरीफ साहब ने कमीशन बनाने का रिटायर जज भी किया है तो वो सारी चीजें जो है शो करती हैं कि यहाँ पाकिस्तान में इस पर शायद कोई एक्शन ना हो। और पाकिस्तान सबकिस्मत मुल्क है कि जहाँ पे कानून की हुक्मरानी होती नजर नहीं आ रही है
जी जी।
और इसीलिए ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने भी गांव से अपील की है पूरे दुनिया के ममालिकों के सीक्रेट कमियां जो हैं वो खत्म करके उनकी जितनी भी कमियां हैं जिसकी भी हों वो पब्लिकली डिक्लेयर कर दे, कम अज कम ये सीक्रेसी इसमें खत्म करे जिसकी वजह से ये मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन जो है बहुत आम जान हो जाती
है। सही गिलानी साहब, यहाँ पे वॉइस ऑफ अमेरिका की एक रिपोर्ट में भी ये तذکرہ था कि खासतौर पे जो जी जी आपकी आवाज़ आ रही है कि यहाँ पे भी ये कहा जा रहा था कि जो मुख्तलिफ एक्सपर्ट हैं जो फाइनेंशियल इश्यूज के। जी आपको मेरी आवाज़ आ रही है गिलानी साहब? हेलो जी गिलानी साहब, आप हमारे साथ हैं?
हेलो
जी, आपको मेरी आवाज़ पहुंच रही है? आपकी आवाज़ हम तक आ रही है गिलानी साहब, लेकिन आपको मेरी आवाज़ गालबन नहीं पहुंच पा रही। तो अगर हम एक दफ़ा रब्ता मुनक़ता करके दोबारा डायल करने की कोशिश करें तो शायद हमारी कम्युनिकेशन हो सके। गिलानी साहब आप हमारे साथ हैं? जी, तो लाइन ड्रॉप करके दोबारा उनसे मिलाने की कोशिश करें। आदिल गिलानी साहब हमारे साथ हैं, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान चैप्टर को हेड करते हैं और उनका ये कहना था कि इस इशू के बाद उन्होंने बाकायदा तौर पे ये कहा है पाकिस्तान की चीफ जस्टिस से कि वो इस मामले का सुमोटो एक्शन लें, आज खुद नोटिस लें और उसकी तहकीकात कराएं। लेकिन उनका ये भी कहना था कि इदारे इतने फाल नहीं हैं पाकिस्तान के अंदर और यही वजह है कि कोई बड़ा एक्शन जो है वहाँ पर होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। हम उनसे यही जानना चाहेंगे कि पाकिस्तान के अंदर इदारों की सतह पर किस तरह से बेहतरी लाई जा सकती है। जावेद सिद्दीक साहब हमारे साथ हैं, सीनियर साफ़ी तजयकार और नवाए वक्त ग्रुप को हेड करते हैं उनके इस्लामाबाद चैप्टर को। जावेद साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें ज्वाइन किया है और बड़े शॉर्ट नोटिस पे आप हमारे साथ हैं। जी जावेद सिद्दीक साहब आप हमारे साथ हैं?
जी
जावेद साहब, हम बात कर रहे हैं पनामा लीक्स पे और यहाँ वर्ल्ड बैंक से ये कहा गया है उनकी डायरेक्टर ने, मैनेजिंग डायरेक्टर ने श्री मुलियानी इंद्रावती, उनका ये कहना था, अगर मैं थोड़ा सा पसमंजर आपके सामने भी रखूंगा, कि ये जो इंकशाफात आए आ रहे हैं सामने इससे आलमी जो मईशतें हैं मुख्तलिफ मुल्कों की उनको नुकसान पहुंचेगा, पहुंच सकता है, क्योंकि अवाम के अंदर ये तासर होगा कि उनके साथ इंसाफ नहीं हो रहा, उनका एतमाद कम होगा कि वो टैक्स अदा करते हैं लेकिन हुक्मरान टैक्स नहीं देते, जिससे फिर गवर्नेंस में और फिर इंफ्रास्ट्रक्चर में मुश्किल आ सकती हैं। ये वो बैकग्राउंड है जिसके पसमंजर में हम आपसे आपका एनालिसिस लेना चाह रहे हैं। आदिल गिलानी साहब हमारे साथ हैं, चेयरमैन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान चैप्टर, और हमने उनसे भी यही पूछा था कि आपके ख्याल में इस स्कैम के या स्कैंडल के सामने आने के बाद कई ममालिक के जो अहदेदार जिनका नाम था, कई एक उनमें से मुस्ताफी हुए हैं, ऑफिशियल्स भी, यहाँ तक कि आइसलैंड के प्राइम मिनिस्टर भी, और पाकिस्तान की जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत है उसके सरबराहान का भी नाम इसी फहरिस्त में है। पाकिस्तान में अगर कोई बड़ा इनिशिएटिव इस रेफरेंस में नहीं आ रहा तो उसकी क्या वजह है? यहाँ तक कि पाकिस्तान में तो कमीशन बनने पर भी इत्तेफाक नहीं हो रहा जो उसको इन्वेस्टिगेट कर सके।
देखिए मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में उमूमी तौर पर ये एहसास पाया जाता है कि ये अफसोस की बात है कि पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं माजी के भी और मौजूदा हुक्मरान, उनकी जो तर्ज सियासत है उसमें शफाफियत बिल्कुल नहीं, और वो हमेशा समझते रहे हैं कि जो बड़े बड़े सियासी ओहदों पर मुतवक्कन लोग हैं वो टैक्स नहीं देते जितनी उनकी आमदनी है। और ये एहसास कम अज कम पिछले 10 साल में बहुत अच्छी जगह तैयार कर गया और पाकिस्तान में बहुत कोशिशें की जा रही हैं। फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू जो है وہ اور وزارت خزانہ جو ہے وہ بہت زیادہ کوشش کر رہے ہیں کہ ٹیکس بیس جو ہے اس کو وسیع کیا جائے اور لوگوں سے جن کے اوپر پہلے ہی ٹیکس لگائے گئے ہیں ان سے مزید ٹیکس جو ہے وہ وصول کرنے کی کوششیں کی جاتی ہیں. لیکن جو بڑے بڑے لوگ ہیں جس طرح یہ ہمارے سامنے ہے کہ آف شور کمپنیز ہیں جہاں کے اربوں ڈالر بڑے ہوئے ہیں اور ایک یہی نہیں کہ وزیر اعظم نواز شریف ان کی فیملی ہے بلکہ کئی سابق حکمران جو ہیں ان کے نام بھی آتے ہیں, اگرچہ اس موجودہ جو نام پیپر میں نام نہیں آیا لیکن آتے رہے ہیں ان کے نام. لیکن یہاں بھی جو کچھ فیملیز ہیں سیاسی فیملیز ان کے نام ابھی بھی آئے ہیں تو عوام میں یہ احساس بڑھ رہا ہے کہ پاکستان کے لوگوں کا پیسہ یہاں سے باہر منتقل کیا جا رہا ہے اور وہ پاکستان کے لوگوں کے کام نہیں آ رہا, جبکہ پاکستان یہ کوشش کر رہا ہے کہ غیر ملکی انویسٹمنٹ جو ہے اس کو پاکستان میں لایا جائے لیکن اپنا پیسہ اپنے لوگوں کا پیسہ بیرونی ملک ہے. اس سے یہ احساس جنم لے رہا ہے کہ پاکستان کے حکمران جو ہیں وہ اس ملک سے کوئی دلچسپی نہیں رکھتے اس کے مستقبل سے.
تو پھر اس ریفرنس میں اس پس منظر میں جو بات کی ورلڈ بینک کے ڈائریکٹر نے وہ کافی درست آپ کو نظر آتی ہے کہ پھر عام آدمی کا اعتماد جو ہے وہ متاثر ہوگا. ایک اور ریفرنس دینا چاہوں گا کہ ٹام کارڈمون ہیں, ان کا تعلق ایک بین الاقوامی تنظیم ہے گلوبل فائنانشل انٹیگریٹی سے, ان کا بھی ایک سٹیٹمنٹ آیا ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ تقریباً ہر سال جو ترقی پذیر معیشتیں ہیں دنیا بھر میں وہاں سے تقریباً $1 خرب جو ہیں وہ ناجائز طریقے سے دوسرے ملکوں میں غیر قانونی طریقے سے وہاں سے نکال لیے جاتے ہیں اور یہ رقم ان ملکوں کو دی جانے والی تمام سالانہ انٹرنیشنل امداد اور بیرونی سرمایہ کاری سے کہیں زیادہ ہے. تو ایک امبیلنس تو عدم توازن تو اس میں پیدا ہوتا ہے.
جی بالکل, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جو ہے پچھلے کئی برسوں سے قرضے لے رہا ہے آئی ایم ایف سے, ورلڈ بینک سے اور دوسرے جو مالیاتی ادارے بین الاقوامی ادارے ہیں ان سے, اور اب تک تو تقریباً 60 سے 70 ارب کے درمیان قرضہ پاکستان تک چڑھ چکا ہے اور یہ احساس بھی پاکستان میں اب عام ہو رہا ہے کہ پاکستان کا ہر شخص جو ہے 1,30,000 روپے کا مقروض ہے اور یہ قرضہ کس طرح اترے گا. اگر یہ جو پیسہ پاکستان سے باہر منتقل ہو رہا ہے آف شور کمپنیز میں, کچھ یہ بھی معلومات ہمیں ملی ہیں کہ اربوں ڈالر کی پراپرٹی جو ہے وہ یورپین ملکوں میں بھی خریدی گئی ہے اور خاص طور پر شرق اوسط کے ملکوں میں اور دبئی میں بہت بڑے پیمانے پہ پراپرٹی جو ہیں خریدی گئی ہیں, ان میں پیسہ انویسٹ کیا گیا ہے. یہی پیسہ اگر پاکستان میں انویسٹ ہوتا تو جاب اپرچونیٹیز نکل سکتی تھی اور پاکستان کو میں سمجھتا ہوں کہ بیرونی قرضوں پر
اس طرح انحصار نہ کرنا پڑتا کیونکہ اس کے ظاہر اور بھی اثرات ہیں بیرونی قرضوں کی واپسی کے لیے پھر ان ڈائریکٹ ٹیکسز کی صورت میں جو دباؤ بڑھتا ہے. سید عادل گیلانی صاحب یہ فرمائیے گا, آپ نے ذکر کیا ایف آئی اے کا, باقی جو ادارے ہیں پاکستان کے اندر ان کی استعداد کار کا, تو یہ آپ کے خیال میں اتنے فعال کیوں نہیں ہے اور اتنے بڑے اسکینڈل کے بعد یہ بذات خود کوئی کاروائی کرنے کی پوزیشن میں کیوں نہیں ہے؟
اس لیے پاکستان کی جو حکومت پچھلے 69 وہ ہر جگہ جو سربراہ لگاتی ہیں, جو حکومتی اداروں کے جو ہے سربراہ یا ان کے افسران لگاتے ہیں وہ چکن چیز پہ لگاتے ہیں, جو ان کے خاص وفادار ہیں ان کو وہاں لگایا جاتا ہے, تو ان کی اپنی شفافیت سے جو ہے بہت ہمیں الزامات لگے ہوئے ہیں. اس وجہ سے یہ کیسے ہو سکتا ہے, جیسے کہ اس وقت اسٹیٹ بینک پاکستان کا گورنر جو لگا ہوا ہے اس کے اوپر یہ الزام ہے کہ نواز کے حساب سے لون دیا تھا $200 million کا ہمیشہ باہر کر لیا, تو اس وجہ سے یہ ساری چیزیں مشکل ہو جاتی ہیں. اور منسٹری آف فائنینس وہ انڈر میں آتی ہے سات ڈال صاحب کی بھی رہتی ہے, منسٹری آف فائنینس ہے ایف ٹی آئی کے نیچے آتا ہے, سات ڈال صاحب نے خود ایک ایفیڈیوٹ بتا دیا میں نے علی لارمنگ کرائی ہے پرائم منسٹر کے لیے, بعد میں نے اس سے واپس لے لیا کہ یہ انڈر میرٹ تھا, مگر یہ کہ یہ چیزیں جو ہیں نا اس لیے عوام جو ہے ان کی باتوں پہ یقین نہیں کرتی اور یہ ادارے جو ہیں وہ ان کی شفافیت کے لیے حال ہے کہ نیب نے آج تک جو ہے بازار خرچی کرپشن پہ اثر کیا نہیں ہے, 19 سال سے کیس چل رہا ہے وہ ابھی تک اس پہ فیصلہ نہیں ہوا ہے, اور دو اس وقت جب شروع ہوا تو 22 ارب روپے کی اس کی جائیداد چیز کی الزام یہ تھا, 20 سال پہلے تو 22 ارب کی ویسے ہی آج 220 ارب ہو گئی ہوگی, مگر اس پہ کوئی فیصلے نہیں ہوتے, تو ان کا ये बिल्डिंग जो है इनको देंगे तो इसका भी असर वही होगा कि पिछले कैसे चल रहे हैं, तो बेस्ट ये है कि पिछली फोर इसको इमीडिएटली टेकअप करे और टेकअप करके इसको पानी का पानी कर दे।
जी अच्छा,
ये होता नजर नहीं आ रहा।
जी गिलानी साहब, आखिरी सवाल इस रेफरेंस में करना चाहूंगा, जब इस दीक्षा हमारे साथ आप रहेंगे इस सेगमेंट में भी और थोड़ा सा और भी आपको सहमत देंगे, गिलानी साहब ये बताइएगा अभी आपको क्या लगता है, क्योंकि एक बाहर एक अपोजिशन का या अवामी दबाव भी है दुनिया में हमें नजर आ रहा है, तो ग्लोबली आपको लगता है कि ऐसी लेजिस्लेशन ऐसी कानून साजी होगी कि ये जो फॉरेन ट्रांजैक्शंस हैं, अगेन थोड़ा सा वाजे तो ये करना होगा कि दूसरे मुल्कों में कारोबार करने में तो हर्ज नहीं है, बुनियादी सवाल तो यही है कि वो पैसा क्या कानूनी तरीके से वहाँ पे गया है, और फिर लीडर्स के लिए वो मॉरल क्वेश्चन ज़रूर हो सकता है कि अगर वो दूसरे मुल्कों में इन्वेस्ट करते हैं तो अपने मुल्कों में क्यों नहीं। लेकिन मेरा आपसे मूवी जो सवाल है वो ये कि अब इंटरनेशनली इस पे फोकस हो रहा है कि लेजिस्लेशन होनी चाहिए, यहाँ तक कि जो दहशतगर्दी है उसको भी लिंक किया जा रहा है। पनामा लीक्स के हवाले से आपके नॉलेज में आई होगी ये बात, ऐसी तंजीमों के भी नाम सामने आ रही हैं जो किसी न किसी तरह से अस्करियत पसंदी में मुलविस हैं और वहाँ पे वो बुनियादी तौर पे उन कंपनियों के पीछे रही हैं, तो अब क्या वो मरहला आ गया है कि जहाँ पे ये तमाम चीज़ें जो हैं वो बड़ी ये रिकॉर्ड जो है वो बड़ा दुरुस्त किया जाएगा और स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगी आपके ख्याल में, यह होनी चाहिए?
देखिए ये असल में ऑफशोर कंपनियां जो ज्यादा तरक्की याफ्ता मुल्कों की, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के नीचे है, डेलीवेयर जो है वो यूएस गवर्नमेंट के नीचे है, ये सब ऑफशोर कंपनियां बनाते हैं। आज खुद इसके अंदर ये कंपनियां हैं और इनका अपना देखिए कि जो वहाँ पे हुआ था एक 85 के अंदर बिगेस्ट बैंक अभी 83 मिलियन फॉर्म की, उसका भी पनामा लीक आया कि वो अकाउंट की पैसा जो है वहाँ चला गया। तो ये चीज ये कि इसके अंदर जो ट्रांसफर इंटरनेशनल का ये है इस वक्त जहाज है कि और इसलिए आप ये बताया कि अगर एक आदमी जो है वो इंडियन में ऐसे कंपनी बनाई है और वो इंडियन में काम करता है तो इंडियन में बैंक देगा, अगर वो जो है अमेरिका में काम करता है तो ये अमेरिका में जो इंडियन हर जगह पनामा में क्यों कंपनी खोला जाएगा, क्यों वर्जिन आइलैंड में, ये इससे भी गलत है और इसको खत्म करना जरूरी है कि और शोर कंपनी जैसे दुबई है, हांगकॉन्ग है, सिंगापुर है, बड़े बड़े आइलैंड है, अपना डेलीवेयर है, ये सब खत्म होना जरूरी है। तब तक ये खत्म नहीं होगा ये किसान चलता ही रहेगा और दुनिया पूरी इसके अंदर चक्रों में घूमती रहेगी।
बहुत शुक्रिया जनाब सैयद आदिल गिलानी साहब, चेयरमैन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान चैप्टर, आप हमारे साथ हैं। जावेद सिद्दीक साहब, आप इस सेगमेंट को समअप कीजिएगा, आपके ख्याल में कोई कार्रवाई पाकिस्तान की सतह पे या बैनुल अक्वामी सतह पे आपको लगता है कि ऐसी लेजिस्लेशन हो सकती हैं, ऐसी सख्त कवानीन बन सकते हैं जिससे इसकी हौसला शिकनी हो फ्यूचर के अंदर, और अभी जो ये मामला है वो भी पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ आपके ख्याल में उसको इन्वेस्टिगेट किया जा सकता हो?
जरूरत तो है, मैं समझता हूँ कि आज यहाँ की खबर ये है कि सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज जस्टिस सरमद मानी जो है उन्होंने इत्तेफाक कर लिया है कि वो इस कमीशन के लिए तैयार हैं जो कि इस सारे मामले की इन्वेस्टिगेशन करेगा।
सही।
और उन्होंने ये भी साथ मुतालबा किया है कि उनके उनको एक माहरीन की टीम दी जाए जो कि इस वाइट कॉलर क्राइम या इस तरह के जो टैक्स अवॉइडर्स या वेडर्स हैं उनको पकड़ने के लिए महारत रखती हो। तो देखिए अब इन्वेस्टिगेशन का सिलसिला जो है वो शुरू हो सकता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबरा इमरान खान और उनके कुछ साथी इस वक्त लंदन में है और खबर ये आई है कि वहाँ पे वो फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स जो बात कर रहे हैं किस तरह इस पैसे को ट्रेस किया जाए कि यहाँ ये पैसा कहाँ से इन ऑफशोर कंपनी में आया है। एक हलचल तो जरूर है लेकिन जैसे आपने कहा कि एक कानून साजी की जरूरत है ताकि ये पाकिस्तान का जो गरीबों का पैसा है या पाकिस्तान के अंदर ये जो पैसा इसको बाहर मुंतकिल करके इससे अपनी जो है जायदादें खरीदना और अपने पुरताइश जिंदगी गुजारना उस पर इस्तेमाल करें। और जैसे आपने कहा कि यही पैसा जो अब तक रिपोर्ट आ रही है वो इस्तेमाल होता है, दुनिया की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो भी इनको इस्तेमाल करती हैं, खिलाड़ियों के पैसे भी इसमें मौजूद हैं, इतना ऐसा पैसा है जो कि लोगों के काम आना चाहिए। और जैसे आपने कहा कि गरीब मुल्क जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके अंदर गुर्बत है, बीमारी है, अफलास है, उस पर ये पैसा लगना चाहिए। बेरोजगारी का एक समंदर है पाकिस्तान में इस वक्त 62% नौजवान हैं और उन नौजवानों को रोजगार का कोई इंसान नजर नहीं आता, उनको बाइज्जत रोजगार मिलेगा। तो मैं समझता हूँ ये पैसा वापस आना चाहिए। एक दूसरी बात यह है कि आइंदा के लिए इस बात को यकीनी बनाया जाना चाहिए कि पाकिस्तान से गैर कानूनी तौर पर
पैसा वो जो है शिफ्ट ना हो जी। बहुत शुक्रिया जावेद सिद्दीक साहब हमारे साथ रहिएगा चंद सेकंड की, हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे पाकिस्तान के अंदर कैपिटल पनिशमेंट पे, और हमारे साथ होंगी ये सेगमेंट में प्रोफेसर खालिदा जकी साहबा, डॉक्टर खालिदा जकी प्रोफेसर हैं सोशियोलॉजी की मिशिगन यूनिवर्सिटी में। एक ब्रेक के बाद बात करते हैं इस पे।
जब रेडियो हो दूर और खबरें हों अहम, तो आइए हमारी वेबसाइट urdu.voa.com पर। जब टीवी सामने ना हो और आपको जानना हो तो और कहीं ना जाइए, urdu.voa.com पर आइए। दिन भर की अहम शह सुर्खियाँ, ताज़ा तरीन खबरें सब मिलते हैं urdu.voa.com पर। अमेरिका और जनूबी एशिया में फैली रेडियो और टीवी के तजुर्बा कार सहाफियों की टीम आपको 24 घंटे बाखबर रखती है। इस पते को याद रखिए www.urduvoa.com।
प्रोग्राम जहांरंग में आपका खैर मकदम, मैं हूं असद हसन, और प्रोग्राम के सिलसिले में हम बात करेंगे पाकिस्तान के अंदर फांसियों पे, कैपिटल पनिशमेंट पे। खबरें ये हैं कि पिछले 5 बरसों में इत्तला ये आ रही है कि पाकिस्तान के सदर ऑफिस ने, प्रेसिडेंट ने 513 जो अपील की दरख्वास्तें थीं, रहम की अपीलें थीं, उनको मुस्तरद किया है, और उसका नतीजा ये भी है कि पिछले एक साल में 326 अफराद को सजाए मौत दी गई है। कैपिटल पनिशमेंट एग्जीक्यूशन हुई हैं मुख्तलिफ मुकदमात में, जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ जराइम में सजा पाने वाले वो अफराद थे। और इस पे आपको मालूम है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल और बैन अल-अक़वामी इंसानी हकूक़ की जो तंजीमें हैं वो तनकीद करती हैं, और पाकिस्तान के हवाले से ये कहा जाता है कि चूंकि वहाँ पर जो जुडिशल सिस्टम है, जो इंसाफ का पूरा एक निज़ाम है, प्रोसिक्यूशन है, पुलिस भी ख़ासतौर पर उसमें काबिल ज़िक्र रहती है, वहाँ पे नकायस हैं, इसलिए इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे होने का ना होने का एहतमाल रहता है। इसलिए पाकिस्तान जैसे मुल्कों में ये कैपिटल पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर इस फांसी की सज़ा के हक में भी आवाज़ें उठाई जाती हैं, और हुकूमत बज़ात खुद ये कहती है कि दहशतगर्दी जैसे मामलों को देखने के लिए शायद ऐसे ही इकदाम की ज़रूरत है, और पाकिस्तान को अपने हालात के मुताबिक इन चीज़ों को एड्रेस करना है। ये पाकिस्तान का वर्जन रहा है, लेकिन एक इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म भी अपनी जगह पे मौजूद है। एनालिसिस हम करेंगे कि पिछले एक साल में भी अगर कम से कम 326 फांसियां हुई हैं तो इससे फ़र्क क्या पड़ा है, जराइम पे क्या फ़र्क पड़ा है, और मुआशरे का जो एक अमूमी अप्रोच या सोच है उसमें क्या तब्दीली आई है। हमारे साथ हैं डॉक्टर खालिदा जकी साहिबा प्रोफेसर ऑफ सोशियोलॉजी मिशिगन यूनिवर्सिटी में, और जावेद सिद्दीक साहब सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार एडिटर नवाए वक्त इस्लामाबाद, वो हमारे साथ हैं। डॉक्टर खालिदा जकी साहिबा, आप बताइएगा, मैंने एक पस मंज़र आपके सामने रखा है, क्या बड़ी तब्दीली आती है कैपिटल पनिशमेंट से? कुछ दुनिया के बड़े जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहाँ पर भी एग्जिस्ट करती है, लेकिन वहाँ के लिए इतनी क्रिटिसिज्म नहीं होती, पाकिस्तान जैसे मुल्कों के लिए होती है, लेकिन जनरली मैं आपसे पूछना चाहूँगा, पाकिस्तान इससे कुछ फ़र्क पड़ता है जराइम पर कंट्रोल में?
थैंक यू असद फॉर ब्रिंगिंग मी ऑन। तो मैं, ये आपका सवाल जो है बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है, तो मैं इसको पाकिस्तान के हवाले से जब देखती हूँ तो मेरे ख्याल में कि हम कुछ सिम्टम्स को एड्रेस कर रहे हैं पाकिस्तान में इस किस्म की पनिशमेंट्स दे के, मगर हम उनके रूट कॉजेज ऑफ दोज क्राइम्स, या जो क्राइम है वो पनिशेबल है बाय डेथ पेनल्टी, उसकी एनालिसिस होनी चाहिए। क्योंकि मेरे ख्याल में जो अभी हम देख रहे हैं पाकिस्तान में, उससे कोई इतना क्राइम कंट्रोल्स पे इतना इसका असर नहीं होने वाला।
सही, तो आपके ख्याल में पाकिस्तान के अंदर कानून पर अमलदारी से मुतालिक सोच क्या है? क्योंकि कहा जाता है ना कि माशरे के अंदर तो कानून का या एहतराम होता है या उसका खौफ होता है। आपकी यहाँ से बैठ के भी, और पाकिस्तान आप जाते भी हैं, आपकी असेसमेंट इस रेफरेंस में क्या रही है? आपने कुछ रिसर्च भी की अभी हालिया दिनों में मुख्तलिफ ट्रेंड्स के ऊपर, तो कानून से मुतालिक अमूमी सोच क्या है वहाँ पे पाकिस्तान में?
लॉ एंड ऑर्डर की जो वहाँ पे रिस्पेक्ट है वो बहुत कम है, और वो जस्टिस सिस्टम इस तरह का बना हुआ है कि उसमें मैं तीन चीज़ें मेरे सामने आती हैं। एक तो जो पावरफुल लोग हैं या इन्फ्लुएंशियल हैं, पैसे वाले हैं, वो अपना पैसा लगा के इंसाफ का कोई डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। दूसरे लेवल पे आपके जो अपोजिट टू दिस एक लोअर इनकम लेवल के लोग हैं, गरीब गुरबा जो ज़्यादा पकड़े जाते हैं, इंसाफ उनको बड़े डिफरेंट तरीके से मिलता है, उनके पास जजेस नहीं होते हैं, वकील नहीं होते हैं इतने पावरफुल के वो उनके केस को डिफेंड करें, और उनको हैंग करना आसान है क्योंकि उनको पूछने भी बाद में कोई नहीं आने वाला।
सही। अब तो ये भी एक समाजी तफरीक जो है वो भी वहाँ पे नजर आती है। जावेद सिद्दीक साहब, आपका एनालिसिस, पहले अगर हम इसी समाजी तफरीक पे बात करें, अभी ये एग्जीक्यूशन की बात हुई है पाकिस्तान में, ये अक्सर ये सवाल उठाया जाता है और अब तो सोशल मीडिया में खासतौर पर, कि बहुत हालिया दिनों में माजी करीब के अंदर 2-3 ऐसे केसेस थे जिसके अंदर ताकतवर पैसे वाले या सियासी असर रसूख रखने वाले लोगों की औलादें शामिल थी, उनके लिए कैपिटल पनिशमेंट अगर वो डिज़र्व करते भी थे तो वो अव्वल तो हो नहीं सकी, और अगर हो भी गई है तो कहीं ना कहीं तस्फिया करा लिया गया है ताकत और सियासत और इन असर रसूख के बलबूते पे, तो इसलिए उसको चैलेंज करना और ज़्यादा उसके अंदर जवाब पैदा हो जाता है। कैपिटल पनिशमेंट पाकिस्तान के अंदर समाजी तफरीक, समाजी रवैये भी आपके सामने हैं, किस हद तक आपके ख्याल में ये एक दुरुस्त ट्रेंड है या इसको थोड़ा रिफाइन करने की ज़रूरत है?
मैं समझता हूँ कि पूरा इंसाफ का जो निज़ाम है, जस्टिस सिस्टम है पाकिस्तान का, उसमें से तब्दीली लाने की ज़रूरत है। ये बहुत ही एक अबतर हालत में हमारा जस्टिस सिस्टम और जजेस की कमी है, और जैसे कि दौलत जो है और सियासी असर रसूख के तहत यहाँ पे इंसाफ नहीं होता, लोगों में फ्रस्ट्रेशन और बढ़ती जाती है। दो तीन चीज़ें, एक तो ये जो जस्टिस सिस्टम प्रॉपर न होने की वजह से, खासतौर पर बदनवानी और करप्शन की वजह से, जो कि इस इंसाफ के निजाम के अंदर भी स्ट्राइक कर चुके
हैं,
इंसाफ नहीं हो रहा। और हमारे कई सामने वाले पुलिस के आला अफसर और जजेस भी ये कहते हैं कि हम जिन लोगों को सजा देते हैं वो भी जेलों से इसी तरह से जल्द ही बाहर निकल आते हैं और वो दलदलाते फिरते हैं, कातिल छोड़ सके, और फिर वो दोबारा लोगों की शायरी की जिंदगी के लिए खतरा बन जाते हैं।
सही।
तो एक सजा अदालत से मिलनी चाहिए, वो सजा उनको नहीं मिल पाती और वो अपने असरों पर पैसे से अपनी मर्जी का एक इंसाफ है वो हासिल करते हैं। तो ये हालिया कैपिटल पनिशमेंट की जो राय हुई है, इसके पीछे पाकिस्तान की जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उसका ये व्यू था कि पाकिस्तान में जो दहशत के भीतर इंसाफ पसंदी के केसेस में जो लोग पकड़े गए हैं उनको या तो सजा नहीं दी गई, और या इस्तगासा ने इतना कमजोर केस बनाया कि वो छूट गए या रहा हो गए, और वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था। इसलिए इन्होंने ये फैसला किया जब ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई और एक नया नेशनल प्लान बनाया गया, खासतौर पर के जो ऊपर हमला था उसके बाद, और उसके बाद ये फैसला किया गया कि ऐसे तमाम अपराध जो कि संगीन जुराम में मुलव्वस है, अगवा बराए कत्ल, अगवा बराए तावान या दहशत गर्दी में, उनको सजाए मौत दी जानी चाहिए, अदालत ने उनको सजा दी हुई है। तो अब ये इसका इनका ख्याल है कि इसका बड़ा एक
पॉजिटिव वो कायम हुआ है
समझते हैं
जी।
मेरे ख्याल में जब तक बुनियादी तब्दीलियां नहीं लाते, फंडामेंटल चेंजेस जस्टिस के निजाम में और अदालतों के निजाम में, उस वक्त
कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला है,
ये ज्यादा कारगर साबित
नहीं। जी डॉक्टर खालिद अज़ीकी साहब, अगर हम पाकिस्तान के पस मंजर में देखें दहशत गर्दी, और ये जावेद सिद्दीक साहब बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि ये इसी पस मंजर में मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने खासतौर पे फोकस किया था कि उन लोगों को सजाएं हों, उस रेफरेंस में आप देखिएगा कैपिटल पनिशमेंट वाकईतन क्या एक इस्लाह का जरिया बन सकती है या उसके तदारुक का जिस दहशत गर्दी का सामना है। एक मिनट है हमारे पास।
में जो अटैक्स हुए उसके बाद से ये जो मॉरिटोरियम था उसके ऊपर वो उसको खत्म किया 2014 में, और उसके बाद आपने देखा कि जल्दी जल्दी बहुत सारे हैंगिंग्स हुई, और इससे ये नहीं ये रेट्रीब्यूटिव एक बदला लेने वाली बात हो गई उनसे और अपना पावर शो करने वाली बात हो गई, मगर इससे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उसके रिस्पांस में आप देखें और ज्यादा वायलेंट अटैक्स हो रहे हैं पाकिस्तान में। और दूसरी बात यह कि जैसे मैं सिद्दीक साहब की बात को जरा आगे बढ़ाना चाह रही थी कि जस्टिस सिस्टम में चेंजेस की जरूरत है और बड़े स्ट्रॉन्ग लोग आने चाहिए जो उस पे डट के चेंज को लाएं। हमारी वहाँ पे सिस्टम ऐसा है कि वो चेंज करना चाहते हैं मगर वो फिर कोई दूसरे एलिमेंट्स उनको रोक देते हैं और बड़े बड़े इम्पोर्टेंट चेंजेस इस वजह से रिसेंटली रह रहे हैं और रह जाएंगे। दूसरी बात ये कि वो इन्फोर्स नहीं होते चेंजेस सोसाइटी में।
बहुत शुक्रिया डॉक्टर खालिदा जकी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। जावेद सिद्दीक साहब आपके भी हम ममनून है कि आप हमारे साथ रहे। सामिन चंद सेकंड की एक ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारा सेगमेंट रेडियो टीवी, उसमें आप हमारे साथ होंगे। जी सामिन, प्रोग्राम है जहरंग और मैं हूँ असद हसन, और प्रोग्राम के सिलसिले में हम अपने सेटेलाइट व्यूअर उनको भी वेलकम कहते हैं, उनको खुश आमदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम के सिलसिले में। पहले जो हमारे सेगमेंट थे दो, उसमें हम रेडियो के हमारे लिसनर्स हमारे साथ थे जिनमें दो इश्यूज पे हमने बात की है, पानामा पेपर्स उनका सामने आना और उस पस मंजर में वर्ल्ड बैंक की एक आला अहदेदार उनका यह बयान कि इससे खासतौर पर जो दुनिया की मईशतें हैं उनको नुकसान पहुँच सकता है और आम आदमी का जो ट्रस्ट है अपनी हुकूमतों पर वो मुतजलजल हो सकता है, उसका एनालिसिस हमने किया। और उसके बाद फिर पाकिस्तान के अंदर कैपिटल पनिशमेंट यानी फांसियों की सजाएं, उसका हमने जायजा लिया है। प्रोग्राम का ये हमारा हिस्सा रेडियो टीवी, इसमें हम बात करने जा रही हैं अफगानिस्तान के अंदर दाएश, उसकी गिरफ्त, अमेरिका के अहदेदार वहां पे मिलिट्री ऑफिशियल्स ये कह रहे हैं कि वो कमजोर हो रही है और अफगानिस्तान की अपनी मिलिट्री फोर्सेज ने टारगेट किया है दाएश के मुख्तलिफ ठिकानों को, खासतौर पर ईस्टर्न सूबे के अंदर, और उसमें कम से कम 40 अस्करियत पसंद दाएश के उनके मारे जाने की इत्तलात मिल रही है। बड़े ऑफेंसिव हैं दाएश के खिलाफ जो अफगानिस्तान में रिपोर्ट हो रहे हैं, और इसी सेगमेंट में हम जायजा ये भी लेंगे एक रिपोर्ट जो सामने आई है जिसमें यह दावा किया गया है कि दिसंबर 2009 में मशरकी अफगानिस्तान के अंदर खोस्त में जो एक अटैक किया गया, हमला किया गया खुफिया इदारे CIA की एक बेस पे, खुदकुश हमला था जिसमें कई एक लोग जो हैं वो मारे, सात अमरीका के CIA अहलकार मारे गए थे, और बकौल इस रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 25 वर्षों में सबसे मोहलिक तरीन हमला था CIA के खिलाफ। इस हमले के बारे में यह कहा गया है कि वो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड था, पाकिस्तान ने और पाकिस्तान के खुफिया इदारे ने इसके लिए $2,00,000 जो है हकानी नेटवर्क को फराहम किए थे। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने कैटेगोरिकली इसकी मजम्मत की है इस रिपोर्ट की, और कहा है कि यह बिल्कुल खिलाफ अकल है, पाकिस्तान की हुकूमत ने उस वक्त भी इसकी तरदीद की थी और अब भी तरदीद करती है, और पाकिस्तान इस वक्त तमाम दुनिया ऑन बोर्ड है और पाकिस्तान बशमूल हकानी नेटवर्क तमाम दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ कार्रवाई भी कर रहा है और दहशतगर्दी का निशाना बनने वाला भी सबसे बड़ा मुल्क है, तो इसलिए पाकिस्तान किसी दहशतगर्दी की कार्रवाई को स्पॉन्सर नहीं कर सकता है, कैटेगोरिकली रिजेक्शन वहां से आई है। लेकिन दोनों डेवलपमेंट्स का हम एनालिसिस लेंगे। हमारे साथ हैं इस पर बात करने के लिए जनाब जुबैर इकबाल साहब, वाशिंगटन बेस्ड एक्सपर्ट हैं, मिडिल ईस्ट इंस्टीट्यूट वाशिंगटन बेस्ड थिंक टैंक उनके साथ वाबस्ता हैं। जनरल अब्दुल क्यूम साहब हमें ज्वाइन करें, सेनेटर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से, उनकी वाबस्तगी है, मिलिट्री इशूज़ के एक्सपर्ट हैं, डिफेंस इशूज़ के, वो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं प्रोग्राम के सिलसिले में। जुबैर इकबाल साहब, पहले ज़रा दाएश और अफगानिस्तान उसका हम जायजा लेते हैं, कितना कैपेबल हो गई हैं अफगानिस्तान की अपनी फोर्सेज कि वो दाएश जैसे जो खतरात हैं उनसे निमट सकें, उनको डील कर सकें?
तो देखने के लिए जरूरी ये है कि आप ये सोचिए कि जहां तक दाइश का ताल्लुक है अफगानिस्तान में, ये वो ग्रुप है जो कि एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप था तालिबान में, और वो उसको छोड़ के चला गया था मुल्ला उमर के इंतकाल के बाद। उसके बाद से दो तीन ऐसे डेवलपमेंट हुई हैं जिसकी वजह से दाइश का इन्फ्लुएंस कम होता चला जा रहा है। एक तो ये हुआ है कि तालिबान आपस में मिलकर दोबारा बैठने शुरू हो गए हैं, उनकी पोजीशन और उनकी लीडरशिप कंसोलिडेट हो गई है, जिसकी वजह से वो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप जो के तालिबान को छोड़कर चले गए थे अब वो वापस आ रहे हैं, जिसकी वजह से दाइश की कमजोरी वैसे ही टेक्निकली शुरू हो गई। उसके साथ साथ ये दुरुस्त है कि अमेरिका के अटैक्स भी हुए हैं ईस्टर्न अफगानिस्तान में, जिनका यकीनन कुछ ना कुछ असर तो हुआ होगा। मुश्किल ये बात आ जाती है कि इसको मेजर कैसे किया जाए, किस हद तक ये कमजोर हुआ। ये मैं कह देना बड़ा जरूरी समझता हूँ कि दाइश जो था वो एक एलियन किस्म का इंस्टीट्यूशन था जिसको खास अहमियत पहले से ही नहीं दे देनी चाहिए थी। याद रहे कि इनको को खास पैसे भी नहीं मिल रहे थे, ना ये लोकली पैसे जनरेट कर रहे थे, इसलिए ये एक्सट्रीमिस्ट जरूर थे लेकिन इनके पास रिसोर्सेज लिमिटेड थी, इसलिए इसको इतनी सीरियसली नहीं लेना चाहिए था, बाकी अगर इनको सीरियस लिया जाता तो उसकी वजह से इनकी अहमियत और बढ़ जाती।
जी जनरल अब्दुल क्यूम साहब हमारे साथ हैं। जनरल साहब, दाइश और अफगानिस्तान पहले भी इन ایشوز پہ بات ہوتی رہی ہے کہ افغانستان کے جو حالات ہیں, جس نوعیت کی عسکریت پسندی ہے, وہ داعش کے لیے کتنی آئیڈیل وہ جگہ ہو سکتی ہے. آپ کے خیال میں جنرل صاحب یہ بتائیے گا کہ داعش کے خلاف جو ابھی ہمیں لگ رہا ہے کہ ایک جو فورسز ہیں افغانستان کے اندر, ان کا بھی اتحاد ہو رہا ہے, پاکستان کی طرف سے بھی ان کو سکرو کیا جا رہا ہے, تو کتنی مشکلات ہوں گی یا داعش کو کتنا دھچکا پہنچ سکتا ہے یا پہنچنا چاہیے افغانستان کے اندر؟ جی جنرل عبدالقیوم صاحب, جی جنرل صاحب سے ابھی ہمارا رابطہ بتایا گیا کہ نہیں ہو پا رہا ہے. زبیر اقبال صاحب ہمارے ساتھ ہیں. زبیر اقبال صاحب یہ بتائیے گا کہ پاکستان افغانستان ان تمام ایریاز کا بہرحال پاکستان کے کچھ حصے قبائلی علاقے خاص طور پہ جہاں پہ شورش رہی ہے, اور کئی قبائلی علاقوں میں تو خاص طور پہ مذہبی بنیادوں کے اوپر ہمیں تفریق یا شورش نظر آتی ہے, اور داعش وہ ایک فنومنا ہے جس نے مذہبی جو فرقہ واریت ہے اس کو بہت زیادہ ایکسپلائٹ کیا ہے, تو اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے لیے انگریڈینٹس تو ہمیشہ سے موجود رہے ہیں, لیکن یہ بھی کہا جاتا تھا کہ اس کا کوئی گلوبل ایجنڈا نہیں ہے.
یس, یہ تو آپ کا کہنا صحیح ہے کہ اس کا کوئی گلوبل ایجنڈا نہیں تھا, لیکن اب آہستہ آہستہ وہ گلوبل ایجنڈا بنتا جا رہا ہے. ہیلو,
جی جی میں سن رہا ہوں آپ کو.
تو وہ اب تو بنتا جا رہا ہے, وہ اس لیے کہ ان کی پوزیشن مڈل ایسٹ میں کمزور ہو رہی ہے, تو اس کو وہ کاؤنٹر کرنے کے لیے اب گلوبل قسم کے ایجنڈا پہ استعمال کر رہے ہیں. وہ کر یہ رہے ہیں کہ ان ملکوں کے جا کے اٹیک کرتے ہیں تھرو ٹیررزم جو کہ ان کے خلاف مڈل ایسٹ میں سپورٹ دے رہے ہیں. تو اس لیے یہ جو فلینکنگ موومنٹ جو آپ دیکھ رہے ہیں آئی ایس آئی ایس کی, اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ وہ ان فورسز کو جو کہ ان کی کاؤنٹر فورسز کو استعمال کر رہی ہیں یا سپورٹ کر رہی ہیں, ان کی وہ سپورٹ کمزور ہو جائے. ان کا اصل مقصد ابھی بھی مڈل ایسٹ ہے, لیکن وہ دوسرے علاقوں کو اپنے کاؤنٹر میجرز کے لیے استعمال کرتے ہیں.
صحیح, اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شاید وہ یہاں سے پھر جو ہیومن کہنا چاہیے جو اسٹرینتھ ہے, وہ بھی افرادی قوت ہے, وہ بھی وہاں پہ مڈل ایسٹ میں لے جانا ان کا ایک مقصد ہوتا ہے. یہ بتائیے گا کہ یہ ننگرہار ہے جہاں پہ یہ ریسنٹ کاروائی ہوئی ہے, 40 ملیٹنٹس وہاں پہ داعش کے رپورٹڈلی وہ ہلاک ہوئے اور افغانستان نے اس کو کنٹرول کیا ہے, تو اگین ریفرنس تو اس بارے میں یہ ضرور بنتا ہے کہ افغانستان کی اپنی سیکیورٹی فورسز, اس کے بارے میں بھی ایک رپورٹ آئی تھی یو ایس ملٹری جنرل کا, یہ کہنا تھا کہ یہ تو غالباً 2021 تک ان کے لیے تیار ہونا بڑا مشکل نظر آ رہا ہے, لیکن یہ بڑے حوصلہ افزا سائن ہو سکتے ہیں افغانستان کی اپنی سٹرنتھ کے لیے اپنی دفاعی اعتبار سے.
دیکھیے, یہ مجھے کہنا چاہیے, یہ پروجیکٹ اسپیسیفک اور ایریا اسپیسیفک ہوتے ہیں. کچھ ایسے کوئی علاقے ایسے ہیں, ننگرہار میں بھی ایسے علاقے ہیں جہاں پر لوکل فورسز جو ہیں یا لوکل پاپولیشن جو ہے وہ ملٹری کو سپورٹ کرتی ہے, آرم فورسز کی سپورٹ کرتی ہے, جس کی وجہ سے ملٹری کو سکسیس حاصل ہوتی ہے طالبان کے خلاف اور داعش کے خلاف. لیکن بائی اینڈ لارج مشکل یہ ہے کہ ابھی تک آرم فورسز اس مقام تک نہیں پہنچی کہ وہ اکیلے انڈیپینڈنٹلی طالبان یا دوسری انسرجنسیز کا مقابلہ کرنے کے قابل ہوں. ایسے جیسے آپ نے فرمایا کہ اس کے لیے ابھی 4-5 سال اور لگیں گے, مشکل یہ آ جاتی ہے کہ اس میں اسمپشن یہ ہوتی ہے کہ ان 4-5 سالوں میں جو اپوزیشن ہے, جس میں طالبان کہہ لیجیے یا اور کہہ لیجیے, ان کی پوزیشن نہیں بدلے گی, وہ پوزیشن ویسے کی ویسے رہے گی. اسی لیے مشکل یہ ہو جاتی ہے کہ آپ کیسے پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ 2021 میں وہ اس قابل ہوں گے کہ وہ افیکٹولی یا انڈیپینڈنٹلی کنٹرول کرنے کے قابل ہوں, کیونکہ اس میں اسمپشن یہ ہے کہ طالبان جو ہیں وہ اسی پوزیشن پہ رہیں گے جیسے کہ اس وقت ہیں. وہ تو نہیں ہوگا, یقین ان کی پوزیشن اسٹرینتھن ہوگی. اس لیے ایونچولی بات وہی ہو جاتی ہے کہ اگر آپ کو وہاں پر یہ پرابلم سالو کرنا ہے تو آپ کو سیاسی طریقے سے سالو کرنا ہوگا. اس کے سیاسی جو کانفلکٹ وجوہات ہیں ان کو حل کرنا ضروری ہوگا. کس حد تک آپ طالبان کو گورنمنٹ کا حصہ بنا سکتے ہیں, کس حد تک ان کو آپ اس قسم کی آٹونمی دے سکتے ہیں, کس حد تک آپ پختون جو لوگ ہیں ان کی پوزیشن کو اہمیت دیتے ہیں, اور کس قسم کے کمپرومائزز اس پختون گروپ اور ناردرن الائنس کے درمیان ہوں گے. یاد رہے کہ ناردرن الائنس صرف 15-20% की मेजोरिटी रखता है, 15-20% की कि वो पोजीशन रखता है मुल्क के अंदर, तो ऐसी कंडीशन में पश्तून जो हैं वो ये समझते हैं कि उनको उनकी जस्टिफाइड जो पावर है नहीं मिल रही, तो इसलिए ये एक किस्म की पॉलिटिकल सोल्यूशन जरूरी हो जाता है। अगर ये पॉलिटिकल सोल्यूशन हो जाता है तो फिर पश्तून को खुद अपने अंदर की जो नेशनलिस्ट प्रॉब्लम है तालिबान वर्सेस नॉन तालिबान उसको हल करना होगा।
अच्छा,
वो इस काबिल होंगे अगर इस किस्म की सोल्यूशन पैदा हो जाए।
जी जुबैर इकबाल साहब, हम आते हैं जो दूसरा जो हमारा सेगमेंट है इसी के साथ जुड़ी हुई जो डेवलपमेंट थी जिसका हमने अपने इब्तदाई में भी तस्करा किया। जनरल अब्दुल क्यूम साहब से भी हमारा रब्ता हो गया है, वो हमारे साथ हैं इस वक्त, उनसे भी हम बात करेंगे। जनरल साहब आपका बेहद शुक्रिया, हम इससे पहले तो बात कर चुके हैं अफगानिस्तान के अंदर दाइश या उसकी मौजूदगी, एक ताज़ा तरीन जो डेवलपमेंट थी उस पस मंजर में हमने उस पर तबादला ख्याल किया है कि 40 अफराद मारे गए और अफगानिस्तान की अपनी सिक्योरिटी फोर्सेज ने वहाँ पर इस नंगरहार सूबे के अंदर ये कार्रवाई की है। पहले तो क्विकली आप दाइश की स्ट्रेंथ या दाइश का वहाँ पे फैलाव जिसकी इतलात मिलती रही हैं और उसको अफगानिस्तान के अपने अंदर से काउंटर करने की जो कोशिशें, आपके ख्याल में कितनी हौसला अफजा हैं?
देखिए ये बड़ी काबिल तारीफ बात है और हम ये समझते हैं कि चूंकि अफगानिस्तान का एक कल्चर है ना, वो बाहर से किसी बंदे को वहाँ टॉलरेट नहीं करते और दैट इज द रीजन के ये जो दाइश है इसका वजूद वहाँ पनप नहीं सकता था, क्योंकि वहाँ या अफगानिस्तान की हुकूमत है और उनके लोग हैं या वो पुराने तालिबान के एलिमेंट्स हैं और एक ट्राइबल सोसाइटी है जो कि एक अपने मिजाज के मुताबिक चलती है, वहां कभी भी एक स्ट्रांग सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं रही। तो हम यही समझ रहे थे कि दाइश वाले कोशिश तो करेंगे कि जो डिसग्रंटल्ड तालिबान हैं उनको साथ मिला के कुछ करें, लेकिन आई थिंक जो अफगान हुकूमत की जो नेशनल आर्मी है अफगान आर्मी, उन्होंने अच्छा एक्शन किया। नंगरहार एक ऐसा सूबा है जो हमारे बिल्कुल पड़ोस में अंदर है, तो उसके अंदर ये अच्छी बात है, काबिल तारीफ है और आई थिंक इसके ऊपर पाकिस्तान का और अफगानिस्तान का आपस में कोऑर्डिनेशन भी रहना चाहिए और है मिलिट्री साइड के ऊपर भी और गवर्नमेंट के पॉलिटिकल साइड के ऊपर।
सही। अच्छा जनरल साहब, अब जो दूसरी रिपोर्ट है जिसका तस्करा मैंने आपसे किया, आज ये वाशिंगटन पोस्ट में भी छपी है, पाकिस्तान के अखबारों ने भी इसको लिफ्ट किया है और ये बुनियादी तौर पे एक मख्फी डॉक्यूमेंट था जो अब गैर मख्फी हुआ है, सामने लाया गया है, एक दस्तावेज है जिसमें ये अननेम्ड है, अननेम्ड इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स की तरफ से ये लिखी गई ये केबल है जिसको अब मंजर आम पे लाया गया है और उसमें दावा ये किया गया है कि साल 2009 में अफगानिस्तान के अंदर खोस सूबे के अंदर सीआईए के हेडक्वार्टर पे जो हमला किया गया जिसमें 7 सीआईए के एहलकार मारे गए, उसमें पाकिस्तान की हुकूमत और बाज़ जगहों पर यह लिखा है कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी उनकी मुआवनत हासिल थी, हकानी नेटवर्क ने यह हमला किया था। पाकिस्तान ने कैटेगोरिकली, दफ्तर खारजा ने, वॉइस ऑफ अमेरिका ने राबता किया है और इसको डिनाई किया है और पाकिस्तान ने कहा कि पहले भी हमने डिनाई किया फिर भी करते हैं क्योंकि ये हमला वैसे भी तालिबान तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने इसकी जिम्मेदारी कबूल की थी और पाकिस्तान पिछले कई बरसों से तमाम ग्रुपों के खिलाफ बशमूल हकानी नेटवर्क के खिलाफ वो कार्रवाइयां कर रहा है, तो ये पाकिस्तान का वर्जन भी सामने आया है। लेकिन ये अननेम्ड बहरहाल रिपोर्ट है, इसकी क्रेडिबिलिटी भी बाज़ लोगों ने क्वेश्चन किए हैं, अमरीका के दफ्तर खारजा के तर्जमान से भी इस बारे में जब सवाल किया गया तो उन्होंने इसके सोर्स पर बात नहीं की है और ना ही इसके ऊपर डायरेक्टली जो है कमेंट किया, सिर्फ इतना कहा कि ये रिपोर्ट महकमा खारजा की नहीं है। बहरहाल डिफेंस की या इंटेलिजेंस की तरफ से या उनके नामालूम जराए को इसमें कोट किया गया है, तो मैंने ये सारा बैकग्राउंड और दोनों तरफ का नुक्ता नजर आपके सामने रख दिया है। जानना चाहूंगा कि इस तरह की रिपोर्ट्स जो हैं कितनी क्रेडिबल होती हैं, दोनों मुल्कों के दरमियान बजाय एक मिलिट्री कोऑर्डिनेशन है लेकिन इसके बावजूद क्या इस बात के इम्कान हैं कि कहीं ना कहीं कोई ऐसा झोल है जिसके सबब ये दीगर चैनल से या दीगर जराए से इस नोयत की रिपोर्ट सामने आ रही है? अभी यह नेशनल सिक्योरिटी आर्काइव है, जॉर्ज वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के अंदर ये एक सरकारी इदारा है जिसने अब इस रिपोर्ट को पब्लिक किया है, आपका मैं एनालिसिस या रिएक्शन या कमेंट्स चाहूंगा इस रिपोर्ट के ऊपर।
देखिए ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि पाकिस्तान जो है ना एक फोर फ्रंट के अंदर दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ा और पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा दुनिया भर में कुर्बानियां दी और हमारी एक अमेरिका के साथ अंडरस्टैंडिंग है, हमारे अड्डे, हमारी बंदरगाहें, हमारे रोड नेटवर्क, हमने इंटेलिजेंस के अंदर भी इवन उसामा बिन लादन के तक ही जब पहुंचे हैं तो इनिशियल लीड इनको पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने दी थी, लेकिन फिर भी कुछ आंसर ऐसे हैं दुनिया के अंदर जो पाकिस्तान को हमेशा बैड लाइट में प्रोजेक्ट करने की कोशिश करते हैं। अभी एक अनऑथेंटिकेटेड किस्म की खबर के ऊपर तो तब से अभी बेजा है, अगर कोई ऐसी बात होती तो CIA से ज्यादा कौन होशियार है या कौन बैन अल-अक़वामी एक सुपर पावर की अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी है, अगर उनको नहीं पता कि क्या है और उनको उनको एग्जैक्ट हालात का पता है कि इसकी तालिबान ने जिम्मेदारी की थी, फिर इसका लिंकेजेस था मिडिल ईस्ट के साथ, फिर उधर से कोई बंदा इनरोल हुआ था जो जहां काम करता रहा, दे एग्जैक्टली नो व्हाट हैपेंड। लेकिन आए दिन फिर कोई ना कोई ऐसी चीज क्रिएट की जाती है जिसमें पाकिस्तान की, मगरबी दुनिया और खसूसन अमेरिका के साथ एक गलतफहमी को क्रिएट किया जाए, पाकिस्तान अनस्टेबल रहे और इसके अंदर मुख्तलिफ। आप ये देखें कि हमारे तो मुल्क के अंदर रेमंड डेविस पकड़ा गया, मतलब उसके लिए भी और कोई शहादत तो नहीं चाहिए थी ना, हमने पकड़ा, उसने दो तीन बंदे कत्ल भी कर दिए, इवन देन पाकिस्तान ने कोऑपरेट किया और यहाँ आज तक लोग उसके ऊपर कोसते हैं हुकूमत को कि आपने एक ऐसे कातिल को वैसे कैसे जाने दिया जो अंडर द गॉब ऑफ डिप्लोमेटिक, तो फिर उसकी इस्लामिक प्रोविजन के तहत उन पेरेंट्स ने माफ किया वगैरह किया तो वो चले गए। तो हम तो खुद शिकार हैं जासूसी नेटवर्क का भी और दहशतगर्दी का भी। अभी हाल ही में आपने देखा कि इंडियन का एक रॉ का एजेंट जो है वो हमारी कस्टडी के अंदर है, कुछ और लोग भी हैं जो अभी अप्रीहेंड हो चुके हैं जिनकी खबरें अभी आने वाली हैं। तो इसलिए ये एक मजाक खेज खबर है जिसकी फॉरेन ऑफिस ने आउटराइटली रिजेक्ट किया है और ये एक अटेम्प्ट है हमारे ताल्लुकात अमेरिका के साथ खराब करने की।
जी, जैसे आपने जो जो कुछ कहा यही फॉरेन ऑफिस ने भी कहा, और फिर मैं आपको थोड़ा सा ये भी बताता चलूं कि अमेरिका के अंदर भी जो इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स हैं, वाशिंगटन पोस्ट ने भी अपने रिपोर्ट में एक इंटेलिजेंस ऑफिशियल का हवाला दिया है जिन्होंने कहा कि ये जो जिस तरीके से ये डॉक्यूमेंट सामने आए हैं ये बड़े गैर मुसद्दका लगते हैं, इन पर एतबार करना मुश्किल है। लेकिन हवाले ये दिए गए हैं कि एक अफगान जो है अरहमान जो है उसके पास ये कोई उसकी पॉकेट में थे या गानी नेटवर्क से कोई मैसेज था, तो एनीवे ये डॉक्यूमेंट इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स की तरफ से थे, अननेम्ड और अगेन उसको लेबल किया गया था सीक्रेट के नाम से, तो दोनों तरफ का नुकता नजर आ गया। डॉक्टर जुबैर इकबाल साहब, आपसे भी चाहूंगा कि आप इसको एनालाइज कीजिएगा, इस मेमो के बारे में आपकी राय क्या बनती है, आप चूंकि इस तरह की रिपोर्ट्स को एनालाइज भी करते हैं और उसकी क्रेडिबिलिटी को भी देखते हैं।
मुश्किल आ जाती है कि वाशिंगटन में भी डिफरेंट किस्म की ऑर्गेनाइजेशन अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स रखती हैं और अपने ऑब्जेक्टिव्स को लेके आगे चलती हैं। याद रहे कि ये आप $2 लाख की बात कर रहे हैं कि वो हक्कानी को दिए गए, याद रहे कि हक्कानी की जो सालाना इनकम है वो $600 से $700 मिलियन है, जो वो स्मगलिंग से, ड्रग ट्रेडिंग से और दूसरे तरीके से पैदा करती है। उसमें $2 लाख ये एक मजाक खेज किस्म की बात बन जाती है। इतना बड़ा मेजर इवेंट हुआ, क्या वो $2 लाख में हो गया जब वहां पर दूसरे साइड जो है उसके पास $600 से $700 मिलियन पर ईयर के हिसाब से आते हैं? ये एक बिल्कुल सिली किस्म की बात है। दुरुस्त यही है कि इसको प्रॉपरली प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट में देखना जरूरी होता है। अगर ये खबर 2009 में थी और नहीं निकाली गई थी, इसका मतलब इसे बेसिकली यही था कि ये फर्म किस्म की खबर नहीं थी, ये बिल्कुल वेग सी खबर थी, ये एक र्यूमर टाइप खबर थी जिसको कभी अहमियत नहीं देनी चाहिए।
बहुत शुक्रिया आपका जुबैर इकबाल साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। जनरल अब्दुल क्यूम साहब, आपके भी हम ममनून हैं कि आप हमारे साथ रहे और आपने इस सेगमेंट में अपना एनालिसिस हमें दिया। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक मुख्तसर सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और बात करेंगे हम रिलीजियस फ्रीडम पे, पाकिस्तान का भी हवाला है और अमरीका के अंदर भी मुसलमान रहनुमाओं ने मुलाकात की है सिक्योरिटी व्हाइट हाउस ऑफिशियल्स के साथ। एक ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं।
ग्लोबल इश्यूज पर दो टोक बात।
मलिया साहबा, क्या इसकी वजह इस्लामोफोबिया है, क्या यूरोप खौफजदा है?
दुनिया भर से माहिरीन की राय।
जब उनको मुहाजरीन का सामना करना पड़ा तो उन्होंने कहा हाँ हम मुहाजरीन को लेने को तैयार हैं, लेकिन मुसलमान मुहाजरीन को लेने को तैयार नहीं है।
Cooperation with countries like Pakistan, which we're already partnering with in this fight against terrorism.
तो पाकिस्तान का पूरा फोकस सिर्फ ये है कि भारत पाकिस्तान को जंग में तल्लक ना कर सके।
गैर जानेदार बहस।
रेमिट डेविस का वाक्य हुआ पाकिस्तान के अंदर, कहां थी अदालतें, कहां थी आजाद है कि हमारी अदालतें, क्या ये अदालतों का फैसला था?
पाकिस्तान में देखिए एक तो कल्चर है साइलेंस का, और खास तौर पे जहां पे सेक्सुअल अब्यूज या कोई भी चीज इस मौजू से इसका ताल्लुक।
इंडिपेंडेंस एवेन्यू वॉशिंगटन DC से मोहम्मद आतिफ के साथ।
We'll be right back.
پروگرام جہرنگ میں آپ کا خیر مقدم. اور پروگرام کے سلسلے میں ہم بات کریں گے ریلیجیس انٹالرنس. یو ایس کمیشن کی ایک یہ رپورٹ تھی, اس کے اندر یہ کہا گیا, یو ایس کمیشن کی رپورٹ آن انٹرنیشنل ریلیجیس فریڈم, یہ جاری ہوئی, جس میں یہ کہا گیا کہ پاکستان جیسے ملکوں کے اندر خاص طور پہ ایسا لٹریچر پڑھایا جاتا ہے جو منافرت کو یا انٹالرنس کو پروموٹ کرتا ہے. ندیم یعقوب ہمارے ساتھی ہیں, انہوں نے اس کے اوپر ایک باقاعدہ ویڈیو پیکج تیار کیا ہے, وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم انالیسز لیں گے. لیکن ایک دوسرا پہلو بھی ہے, خاص طور پہ ایسے میں جب امریکہ کے اندر انتخابی مہم جاری ہے تو بعد قدامت پسند رہنماؤں کی جانب سے جو ان کے نعرے یا جو سلوگنز ہیں ان پہ بھی تنقید ہو رہی ہے کہ وہ بھی ریلیجیس ٹالرنس کے زمرے میں نہیں آتے ہیں. اسی ریفرنس میں مسلمان رہنماؤں نے گزشتہ روز وائٹ ہاؤس میں کچھ آفیشیل سے ملاقات بھی کی, اور اس کے بعد جو انہوں نے پریس ریلیز کی اس میں انہوں نے بتایا, پریس بریفنگ دی, اس میں انہوں نے بتایا کہ ان کا مقصد یہ تھا, انہوں نے لیٹر لکھا ہے دونوں جماعتوں کو کہ وہ مذہبی ہم آہنگی اور مذہبی آزادیوں کو یقینی بنائیں اور ایسے سلوگنز استعمال نہ کیے جائیں جو اس کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. تو ایک پہلے رپورٹ دیکھتے ہیں اور اس کے بعد پھر انالیسز کے لیے ہم جائیں گے. ڈاکٹر رشید چھٹانی ہمارے ساتھ ہوں گے جو کل وائٹ ہاؤس آفیشل سے ملاقات کرنے والے اسنا کے ڈیلیگیشن کا حصہ تھے. آئیے ندیم یعقوب کی رپورٹ دیکھتے ہیں.
پاکستان میں مذہبی تعصب کی ایک وجہ سکولوں میں پڑھائی جانے والی درسی کتابیں ہیں جن میں دوسرے مذاہب کے بارے میں عدم رواداری اور مذہبی منافرت کی کئی مثالیں موجود ہیں اور جو سال ہا سال سے بچوں کو پڑھائی جا رہی ہیں. یہ خلاصہ ہے یو ایس کمیشن آن انٹرنیشنل ریلیجیس فریڈم کے زیر اہتمام تیار کی جانے والی ایک رپورٹ کا, جسے گزشتہ روز واشنگٹن میں شائع کیا گیا. امریکی ادارے کی مدد سے یہ رپورٹ ایک غیر سرکاری تنظیم پیس اینڈ ایجوکیشن فاؤنڈیشن نے مرتب کی ہے. فاؤنڈیشن کے صدر اظہر حسین نے اس رپورٹ کے بارے میں بات کرتے ہوئے بتایا,
مجھے سب سے زیادہ حیرانگی اس بات پر ہوئی جب ہم یہ رپورٹ کمپائل کر رہے تھے یا لکھ رہے تھے اس پر ریسرچ میں, کہ ابھی تک ہمارے جو ہم لوگ کلیئر نہیں ہیں پاکستان میں کہ مائنورٹیز کا کیا رول ہے پاکستان کے اندر. مائنورٹیز ہندو ہو چاہے کرسچن ہو چاہے وہ احمدی ہو چاہے وہ کوئی بھی گروپ ہو, مائنورٹیز کا رول کیا ہے. اور جو دوسری حیرانگی تھی کہ ہم لوگ ابھی تک یہ فیل تھریٹن کیوں کرتے ہیں کہ ایز اے میجورٹی 95% سے زیادہ مسلمان ہیں, ہم یہ کیوں, ہمیں ڈر لگتا ہے, یہ تھریٹن فیل کرتے ہیں کہ اگر ہم مائنورٹیز کی کنٹریبیوشنس کو اور ان کو ایکول رائٹس اگر دینا شروع کر دیں گے تو سم ہاؤ اسلام کم ہو جائے گا یا مسلمانوں کی اسلام میں کچھ فرق آ جائے گا.
نیشنل پریس کلب میں رپورٹ کے افتتاح کے موقع پر یو ایس کمیشن آن انٹرنیشنل ریلیجیس فریڈم کی کمشنر ڈاکٹر کیٹرینا لینٹوس نے پاکستان میں مذہبی آزادی اور اقلیتوں کے حقوق کے بارے میں پائی جانے والی صورتحال کے بارے میں مایوسی کا اظہار کیا.
Well, we honestly believe that a first step would be for the U.S. State Department to designate Pakistan as a CPC.
ہم ایمانداری سے سمجھتے ہیں کہ امریکی وزارت خارجہ کی جانب سے پاکستان کو انٹرنیشنل ریلیجیس فریڈم ایکٹ کے تحت کنٹری آف پرٹیکولر کنسرن یا خصوصی تشویش والا ملک قرار دیا جانا چاہیے. ایسا کرنے سے ہماری حکومت کو موقع مل جاتا ہے کہ وہ قانونی طور پر دوسری حکومت سے بات چیت کر سکے. اس کا مقصد کوئی تعزیری کاروائی نہیں ہوتا بلکہ اس ملک کی مدد کرنا ہوتا ہے تاکہ وہ اپنے لیے کوئی لائحہ عمل تیار کر سکے. پاکستان سے متعلق ترجیحات میں سر فہرست توہین مذہب کے قانون میں اصلاحات ہونی چاہیے, خاص طور پر اس کے اطلاق کے بارے میں. ہمارے نزدیک ایسے افراد پر بھی مقدمہ چلایا جانا چاہیے جو توہین مذہب کے قانون کو کچھ وجوہات کی بنا پر بدلہ لینے کے لیے استعمال کرتے ہیں.
In one step, but Pakistan could begin by reforming the way those laws are enforced.
انہوں نے کہا کہ اگر حکومت سیاسی عزم کا مظاہرہ کرے تو پاکستان کے اندر عمومی طور پر پائے جانے والے بیانیے کو تبدیل کیا جا سکتا ہے. واشنگٹن میں واقع تھنک ٹینک وڈرو ولسن سینٹر سے منسلک جنوبی ایشیائی امور کے ماہر مائیکل کوگلمن نے اس موقع پر کہا کہ پاکستان کے سیاسی حقائق ایسے ہیں کہ حکومت کوئی ٹھوس حکمت عملی وضع نہیں کر پائی.
Unfortunately, I don't. I always wish I could. Every time there's one of these terrible terrorist attacks, I would like to think...
بدقسمتی سے دہشتگردی کا جب بھی کوئی خوفناک واقعہ ہوتا ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ شاید اس بار پاکستان کی حکومت جاگ اٹھے گی اور کوئی تبدیلی آئے گی, مگر آخر میں یہ ہوتا ہے کہ حکومت بااثر مذہبی انتہا پسند اور دہشت گرد گروہوں کے دباؤ میں آ جاتی ہے. یہ گروہ مذہبی آزادی کے لیے آئینی اصلاحات لانے کی کسی بھی کوشش کی مزاحمت کریں گے اور حکومت ایسی صورتحال سے نمٹنا نہیں چاہتی. تو ایسی صورت میں تبدیلی کے لیے حکومت کو معاشرے کے ساتھ مل کر کام کرنا ہوگا.
اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ملک میں رائج درسی کتابوں میں مذہبی عدم برداشت اور منافرت کی 70 نئی مثالیں سامنے آئی ہیں. ان میں سب سے زیادہ بلوچستان اور سندھ کی کتابوں میں ہیں. شرکا کا کہنا تھا کہ پاکستان میں مذہبی انتہا پسندی, عسکریت پسندی اور مذہبی منافرت کو ختم کرنے کے لیے سیاستدانوں اور حکومت کو مل کر ٹھوس اقدامات اٹھانے ہوں گے.
جی سامعین, ندیم یعقوب کی یہ رپورٹ تھی جو پاکستان کے پس منظر میں خاص طور پہ ہائی لائٹ کیا انہوں نے. وہاں پہ مذہبی جو اقلیتیں ہیں, مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے افراد ہیں, ان کے لیے کیا چیلنجز ہیں, ان کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے. ہم ڈاکٹر رشید چھٹانی صاحب سے رابطہ کر رہے ہیں, ایکسپرٹ ہیں, یہاں پہ واشنگٹن میں ایک نان پارٹیزن تھنک ٹینک کے ساتھ وابستہ بھی ہیں, کمیونٹی لیڈر بھی ہیں, اور گزشتہ روز یہاں پہ جمعرات کو وائٹ ہاؤس کے کچھ آفیشلس کے ساتھ ان کی ملاقاتیں ہوئیں, جس اسنا کے ڈیلیگیشن کی اس کا وہ حصہ بھی تھے. اس کے بعد انہوں نے پریس بریفنگ جو وہاں پہ اسنا کی رہنماؤں نے دی, اس میں اس بارے میں بھی بریف کیا گیا کہ مذہبی آزادی کا جو معاملہ ہے وہ آج کل امریکہ کے اندر بھی وہ اس پہ بڑے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں, خاص طور پہ مسلمانوں سے متعلق جو کچھ سلوگنز یا کچھ نعرے استعمال کیے گئے ہیں انتخابی کیمپین میں, وہ بھی خاص طور پہ نام لے کے کہا گیا ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے, وہ بہت حوصلہ شکنی کرتے ہیں. اس میں دیگر مذاہب کے لوگ, کرسچن کمیونٹی کے لوگ بھی شامل تھے. یہاں پہ اسنا کی طرف سے جو بریفنگ کا اہتمام کیا گیا تھا واشنگٹن پریس کلب میں, اور اس میں انہوں نے بھی یہ کہا کہ یہ امریکہ کی اپنی اقدار اور جمہوری روایات کے برعکس ہے کہ کسی بھی مذہب یا کسی بھی مذہب کے ماننے والوں کے لیے اس نوعیت کا ماحول پیدا کیا جائے کہ انہیں یہ عدم تحفظ کا احساس ہو, یا انہیں لگے کہ ان کے لیے جو مذہبی آزادیاں جن کو اشور کرتا ہے امریکہ کا قانون, امریکہ کا آئین, ان کے لیے مشکلات پیدا ہو رہی ہیں. ہم رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ڈاکٹر رشید چھٹانی سے کہ وہ ہمیں اس بارے میں اپڈیٹ کریں, لیکن آپ کو ایک چھوٹی سی ساؤنڈ بائٹ ہم اس دوران میں آپ کو سنواتے ہیں. اظہر عزیز, یہ اسنا کہ جس ڈیلیگیشن نے کل وائٹ ہاؤس میں آفیشلس کے ساتھ ملاقاتیں کی اس کو انہوں نے ہیڈ کیا, اور ڈیوا ریڈیو پہ ہمارے ساتھ افتخار حسین نے ان سے بات کی ایکسکلوسیولی. آئیے سنتے ہیں کچھ ان کے ریمارکس کیا تھے, کیا انہوں نے کہا, کیا وہ چاہتے ہیں امریکہ کے اندر مذہبی آزادیوں سے متعلق.
We have been hearing this very reckless and hateful rhetoric that is being made by certain political candidates. We are also seeing temperatures going up when it comes to Islamophobia, bigotry and hate. And this is the reason why we started this whole two-day events with this press conference, where not only prominent Muslim leaders spoke, but we had our friends from the other faiths. So when we engage with the administration, we are going to bring to their attention what the challenges of American Muslims are. We have been for a very long period of time dealing with the law enforcement, working with Department of Justice, Department of Homeland Security to ensure that the civil rights of Muslims are protected, their places of worship are protected, no Muslim have to go through difficult times, they don't have to become victims of hate, be victims of bigotry, and this is an engagement through which we are providing a service to the American Muslim community. And I very strongly believe that we live in this great land of ours where these opportunities and possibilities exist. Unfortunately, in many parts of the world, we don't have these options. So this is a blessing of living in a vibrant democracy like ours.
جی سامعین, یہ تھے کچھ ریمارکس جو ہم نے آپ کو سنوائے. آڈیو انٹرویو تھا ڈیوا ریڈیو سے افتخار حسین نے کیا اظہر عزیز صاحب کا, جو کہ اسنا کے ڈیلیگیشن کو لیڈ کر رہے تھے اور وائٹ ہاؤس آفیشلس کے ساتھ ان کی ملاقاتیں ہوئیں. ڈاکٹر رشید چھٹانی صاحب سے ہمارا رابطہ نہیں ہو پایا ہے, ہم ان سے دونوں ایشوز پہ ان کے ریمارکس لیتے کہ پاکستان میں مذہبی آزادی سے متعلق ماحول کیا ہے, اور ابھی یہ جو اسنا کا ڈیلیگیشن جو ملا ہے اس نے وہاں پہ کیا مطالبات کیے ہیں. لیکن کچھ چیزیں ہم نے جو سنی, یہاں عزیز صاحب کی جو گفتگو ہم نے آپ کو آڈیو سنوائی, انگریزی کے اندر تھی, میں اگر آپ کے سامنے اس کو سم اپ کر سکوں, تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اب بعض سیاسی رہنماؤں نے, سیاسی امیدواروں نے صدارتی ان کا اپنی جو جاری مہم ہے, انتخابی مہم ہے صدارتی انتخابات کے لیے, اس کے اندر کچھ ایسے نفرت آمیز نعرے لگائے جس سے بہت زیادہ تشویش پیدا ہوئی. اور یہ بھی تاثر ملتا ہے کہ امریکہ کے اندر اسلاموفوبیا یعنی اسلام کے سے خوف کا ایک ماحول ہے. ہم اس کی ایسا نہیں چاہتے ہیں کیونکہ یہاں پہ تمام لوگوں کے لیے ایک بڑا اچھا ماحول رہا ہے جہاں پہ وہ مذہبی آزادیاں انہوں نے انجوائے کی ہیں, اور اس روایت کو برقرار رکھنا چاہیے. تو یہ نہ مطالبہ نہ صرف مسلمانوں کا تھا بلکہ ان کے بقول, عزیز صاحب کے بقول, اس میں جو دیگر مذاہب کے ساتھ تعلق رکھنے والے اکابرین تھے انہوں نے بھی وائٹرس آفیشلس کے ساتھ اپنی ملاقاتوں میں اسی چیز کو باور کرایا ہے کہ مسلمانوں کے لیے ان کی مساجد, مسلمانوں کے لیے اوور آل جو ماحول ہے مذہبی آزادیوں کا, وہ مکمل طور پہ پروٹیکٹڈ اور محفوظ ہونا چاہیے ہے. یہ بات اگر امریکہ کے اندر ان حالات میں بھی مسلمان رہنما کر رہی ہیں تو بلا شبہ پاکستان کے اندر اور دیگر اسلامی ممالک کے اندر بھی اقلیتوں کے لیے ان کی مذہبی آزادیاں ان کو بھی یقینی بنایا جانا اسی طرح سے بے حد ضروری ہے. اور پروگرام کا ہم یہاں پہ اختتام کرتے ہیں. ہمارے بہت سارے آج کچھ مہمان میں شامل نہ ہو سکے ہمارے آج کے اس پروگرام میں. اسد حسن کو اور ہماری پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھی, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتی.